अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम है अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया। दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
ओम शांति। आज हम आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, उनकी जिस एक जीवन यात्रा, भगवान के उस अमूल्य अनोखे नूरे रतन की आध्यात्मिक यात्रा, 65 साल से 65 ईयर्स से एक फरिश्ता अपने जीवन को समर्पित करते हुए सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, अपने ज्ञान से अपने बहुत सुंदर तपस्या और सेवा के और धारणा के वाइब्रेशन से। आदरणीय सुदेश दीदी जी वर्तमान समय जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था के। इसके साथ साथ भगवान ने आपके मस्तक पर कलश रख दिया ज्ञान सरोवर का भी, तो आप ज्ञान सरोवर के भी डायरेक्टर हैं। अच्छा उतना ही नहीं दीदी जी यूरोप कंट्रीज के भी डायरेक्टर है। देखिए इस उम्र में कितनी सारी जिम्मेवारियां बहुत बेखबू बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, और इसी के साथ साथ जर्मन इस कंट्री के भी आप डायरेक्टर हैं और वहां के रिट्रीट सेंटर के भी आप डायरेक्टर हैं। कौन कह सकता है कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी की तरफ देखिए कि दीदी जी कितने सुंदर तरीके से आप संचालन कर रहे हैं। दीदी जी एक स्पिरिचुअल लीडर टीचर गाइड है, और दीदी जी ने भारत के अंदर 1960s के अंदर जयपुर के अंदर एक सेंटर और म्यूजियम खोलने के निमित्त बने। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स देश और विदेश में खुलवाने के आप निमित्त बने। दीदी जी की विशेषता बहुत अच्छी तरह से वो सबसे पहले 1974 में आदरणीय जानकी दादी जी, जिनको ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले विदेश की सेवा पर भेजा, तब दीदी जी इनके साथ थे। और आदरणीय दीदी जी ने दादी जी के साथ मिलकर आउट ऑफ इंडिया लंदन में पहला सेंटर खोला, और वहां पे हजारों ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए जो लगभग 110 कंट्रीज में जाकर अभी वो वहां सेंटर संभाल रहे हैं। ये दीदी जी की विशेषता है। दीदी जी का ज्ञान सुनाने का तरीका, वो भारत के शास्त्रों की जो बातें हैं उनके जो अर्थ है वो इतना सुंदर तरीके से दीदी जी समझाते हैं कि पूर्व और पश्चिम इन दोनों का बहुत सुंदर संगम करके समझाते हैं कि जो कोई उनके इस ज्ञान के गोह्य रहस्य को समझेगा जानेगा वो तुरंत जैसे बाबा का बच्चा बन जाएगा। मैं जस्ट एक छोटा सा एक सिर्फ अनुभव सिर्फ बताती हूँ। बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी ज्ञान सरोवर में, और दीदी जी ने वहां अपना वक्तव्य रखा था। एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए और दीदी जी का वक्तव्य सुनने के बाद उनके पास गए और कहा, दीदी जी मुंबई आने का निमंत्रण, सिर्फ मुझे आप बताइए कि आप मुंबई कब आ रहे हो, बस मैं अपनी चार्टर्ड फ्लाइट आपको भेज देता हूँ, आपको सिर्फ उस चार्टर्ड प्लेन में बैठकर आना है, लेकिन दीदी जी आपको मुंबई जरूर आना है। तो दीदी जी की जो वाणी है बड़ी गुह्यता से भरी हुई, सरलता से सिंप्लिसिटी से, और ज्ञान के गुह्य राज को स्पष्ट करने वाले ऐसे आदरणीय सुदेश दीदी जी का आज हम सभी को परम सौभाग्य है कि आज हम उनकी अनुभव युक्त क्लास सुनने जा रहे हैं, और वो क्लास बाबा का साथ और साथीपन का अनुभव कैसे करें। आदरणीय दीदी जी और दिल्ली वाले दीदी जी सब बैठे हैं, और दिल्ली वाले आपका बहुत सुंदर तरीके से स्वागत करना चाहते हैं। तो आदरणीय सतीश दीदी जी भी और साधना दीदी जी भी दोनों साथ में आएंगे।
शांति। अभी सरिता बहन ने स्वागत किया हमारे परम आदरणीय सुदेश दीदी जी का, और समय तो बहुत हो गया लेकिन मेरे हृदय के उद्गार मैंने सोचा कंट्रोल कैसे करूं, तो सिर्फ 2 मिनट मैं दीदी के जरूर लूंगी। हमने सुदेश दीदी जी की पालना लंदन में भी ली है और दीदी ने वारिस क्वालिटी सोल्स बहुत निकाली हैं पूरे विश्व में, ये दीदी की विशेषता है। बाबा के वारिस बच्चे आपने बहुत निकाले हैं पूरे विश्व में, तो अभी 1-2 महीने के अंदर की बात मैं आपको बताती हूँ जो मैंने सुदेश दीदी जी से सीखी। और मेरे हृदय में सम्मान तो इनके प्रति पहले ही बहुत है और बहुत अधिक बढ़ गया। आदरणीय सुदेश दीदी जी इनके लौकिक सिस्टर हैं नरेश बहन, तो वो हमारे नजदीक में रहते हैं हडसन लेन में, तो उनको अभी माउंट आबू आना था। और नरेश बहन जो हैं उनका पूरा परिवार बाबा और बाबा के यज्ञ के बहुत अधिक नजदीक है, और उनके बेटों ने भी लंदन में भी जयंती दीदी सुदेश दीदी उनकी बहुत पालना ली हुई है, बहुत ही नजदीक हैं। तो उनको जब मधुबन में आना था तो सुदेश दीदी जी को उन्होंने बताया हम मधुबन आना चाहते हैं, तो दीदी की महानता देखिए, दीदी ने कहा उनको कि आप पहले अपनी जो सेंटर की टीचर बहन है उसे लेटर लिखवाओ तब मैं आपको आने की परमिशन दूंगी। और हमने मैसेज किया दीदी के फोन पर और तब दीदी ने उनको अलाउ किया। तो ये हमारे यज्ञ के नियम मर्यादाएं जो हमें इतनी महान विभूति अपने इतनी महारथी दीदी इनसे सीखने को मिलती है। तो दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो बहुत छोटे हैं, आप बहुत बड़े बहुत महान हैं, आपसे सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम आनंद। ओम आनंद। संगम युग की विशेषता कितना हमारा सुंदर भाग्य है, पद्मा पदम भाग्यशाली है कि हमें ये बेहद के परिवार के मिलन का सुख मिलता है। भाई साहब ने जो गीत बजाया वो किसने गाया, पहले ट्रैफिक कंट्रोल से जो पहले सॉन्ग बजा आपको मालूम है किसने गीत गाया? ये आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? मैंने तो समझा आपने गाया है मैंने तो यही समझा तुम्हारे मिलन का अनुभव बड़ा निराला है बाबा से मिलन का अनुभव बड़ा निराला है, इसमें सिर्फ कोई साकार मिलन की बात नहीं है, बाबा बाबा है, चाहे साकार में है चाहे आकार में है अव्यक्त है, साकार है अव्यक्त है निराकार है, परंतु बच्चों के लिए बाबा बाबा है। रोज बाबा से मिलते हैं ना आप, या आप मिलते हैं परंतु बाबा को इतना प्यार है, आप मिलना चाहो या ना मिलना चाहो वो तो मिलने आ जाता है। कोई दिन मुरली मिस होती है, मुरली क्या है? मुरली बाप और बच्चों की मुलाकात है, बात है। मीठे मीठे बच्चे मीठा शब्द सुनते ही मुख से मीठे बच्चे बगैर शुरुआत होती नहीं। वो स्मृति दिलाते हैं पहले कि मैं मीठे बच्चे किनको कह रहा हूं। ये स्मृति का तिलक पहले लगा देते हैं ओम शांति का। जैसे ये बिंदी तिलक लगाते हैं, यह आत्मा की स्तुति का तिलक है। तो ओम शांति कहने का मतलब ही कि परमात्मा आत्माओं को स्मृति दिला रहे हैं, मैं शांति का सागर, तुम शांत स्वरूप बच्चों से मिलने आया हूं। और कभी कभी तो दो बार ओम शांति तो पूछते हैं किसने बोला, एक बारी साकार ने बोला, दूसरे बारी निराकार ने बोला, एक बारी मुरली में कहा कि फिर तुम जवाब दो ना, तो कहो ओम शांति बाबा। राइट। तो स्मृति दिलाई कि हाँ बाबा, ये मिलन कितना सुख वाला है, शांति देने वाला है, शक्ति भरने वाला है, पर निराला है। आपसे मिलन का अनुभव बड़ा निराला है, क्योंकि जो मिलन मनाने आता है उसको हमने बड़े अनोखे तरीके से देखा है, अद्भुत है, अनोखा है, न दिखाई देने वाला दिखाई देता है। और हम साकार में मनुष्यात्मा से जब मिलते हैं तो जब किसी से बात कर रहे हैं तो सामने शरीर और फिर आत्मा याद आती है। और शरीर से मिल रहे होते हैं या आत्मा से मिल रहे होते हैं, बात किससे कर रहे होते हैं? सारी उम्र सदियों से सिस्टम चलता है, एक दो से बात कर रहे हैं, शरीर से बात कर रहे हैं या आत्मा से बात कर रहे हैं? वो दिखाई देती है। बड़े निश्चय से कहते हैं आज मैं उनसे मिल के आई। वो किसी मिनिस्टर से जाएंगे ना मिलने, उनको तो पता भी नहीं कि मैं आत्मा हूं, कहते मैं उनसे मिल के आई। तो किससे मिल के आए? तो उस आत्मा की जो पोजीशन उस समय है, उस आत्मा का जो रोल उस समय है, उस रोल के आधार से आप उससे मिल के आए ना। संबंध में शरीर में मिले, मां मिलने आई बेटी से, या बेटी मिलने आई मां से, बहन मिलने आई भाई से, या कोई भी परिवार का संबंधी आया, तो संबंध तो एक सामने निमित मात्र है, पर मिलने मिलना जो है वो तो आत्मा के जो अंदर के विचार और व्यवहार है, भावना है, लक्ष्य है, उसके लेन देन का नाम मिलन है ना। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं और वो आपकी बात ध्यान से नहीं सुनता, आप बोल मेरी तरफ देखा भी नहीं, अब आपको तो शरीर तो सारा दिखाई पड़ रहा है, आपकी तरफ देखा नहीं, क्या मतलब शरीर को देखा क्या? आपके अंदर जो भावना थी, आप जिस संकल्प से गए उस पर उनका ध्यान नहीं गया, इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो जैसे शरीर रीति से भी वास्तव में न दिखाई देने वाली भी जब हम मिलते हैं और तो उनकी जो विशेषता है जो आत्मा में है शरीर में नहीं है, संबंध भी है तो वास्तव में शरीर से तो कहने में आता है परंतु संबंध तो आत्मा का है ना। और जो ओरिजिनल सच्ची बात है, आज सत गुरुवार का दिन है तो जो सत्य बात है वो परमात्मा उस पर लाइट अथवा फोकस करते हैं कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है अथवा हम आत्माओं का कलप पहले वाले देवी देवता धर्म की आत्माओं का मिलन है। यह हमारा रूहानी परिवार है, यह हमारा ईश्वरीय परिवार है, ये ब्राह्मण कुलभूषण के बच्चे। तो हमने वो प्रेजेंट समय में जब ये रियलाइज किया तो हमारा संबंध जैसे शरीर में रहते उनकी विशेषताओं से कनेक्शन जुड़ता है, विशेषता से विशेषता का कम्युनिकेशन होता है। तो कहते हैं बहुत अच्छा मिलन हुआ। कोई परिवार में एक में विशेषता है, दूसरे में थोड़ी कमी कमजोरी है, कहता है इनसे तो बात करना बड़ा डिफिकल्ट है। अब बात करना तो डिफिकल्ट नहीं है मैं बात तो करते हैं और ही जोर से बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं है और ही जल्दी ज्यादा बात करते हैं। तो मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि गुण और अवगुण का मिलन होता नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये परमात्म मिलन का अनुभव बड़ा निराला है क्योंकि ये अनुभव है, हमने देखा हमने पाया। शिव भोला भगवान कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। अभी कोई बाहर से तुलना नहीं है, मनुष्यों के प्यार और परमात्म प्यार का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि मनुष्य आत्माओं का प्यार जो है वो फिर भी शरीर के आधार पर है, संबंध भी शरीर के आधार पर नया नया जुड़ता है, पर परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध है। तो जितना जितना हम परमपिता परमात्मा के साथ रोज जो बाबा स्मृति दिलाते हैं परमपिता के स्वरूप में अधिकार याद कराते हैं, बच्चा कहा माना तुम भिखारी नहीं हो अधिकारी हो, अब तक भक्ति मार्ग में परमपिता कहा, पिता कहते हुए भी मंगता बन के सामने गए। तो परमात्मा को मेहनत करनी पड़ती है ठीक रिश्ता जोड़ने की, अधिकारी बनाने की। भक्ति में भी भावना तो बहुत होती है, प्यार भी बहुत है, त्याग भी है, हठ साधना भी है, तपस्या भी है, फिर भी कहते हैं मिलन नहीं हुआ, भटक रहे हैं। भगत है चलो भटकते नहीं है, भिखारी है तो भगवान कहता है तुम भिखारी बनकर के क्यों मेरे पास आए हो, तुम तो मेरा तो भंडारा खुला हुआ है, तुम तो अधिकारी हो। स्मृति दिलाते हैं तो मुरली में 80% टाइम तो बाबा का वो जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो रॉन्ग हमने समझा हुआ है ना, वो सिद्ध करने में लगता है। आज भी जैसे कहा ना कि देखो मैं अपने आप को गालियां थोड़ी दूंगा, सर्वव्यापी कहा तो कुत्ते बिल्ले में होगा क्या, और हमने कहा बाबा, मन में सोचा कि नहीं, आपको तो गाली बेशक लगी पर हमको भी गाली लगाएगी उसी बहाने, क्यों हम आप मेरे पिता हो तो फलाने का बच्चा कहा तो आपकी गाली तो हमको भी लग जाएगी ना, अगर वो जानवर का बच्चा है, आप अगर उस जानवर में हो और हम आपके बच्चे हैं तो आपकी इंसल्ट नहीं है तो हमारी भी इंसल्ट है। स्वमान जागृत हो गया, बाबा ने सिद्ध किया कि तो मेरे को गालियां दे रहे हो। तो अब समझ में आ गया कि ज्ञान मिला है तो परमात्मा की महिमा को भी समझ के महिमा करनी है। तो अंदर से वो संबंध के अनुभव का सुख है, और वैसे अनुभव भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमको कोई चीज देखनी होती है तो सिर्फ आंखों से देखने की बात है, कॉमन सेंस है। आपको अगर कोई चीज चाहिए, किसी दुकान पर आप जाओ, सामने रखी हुई है शेल्फ पर, आप सेल्समैन को कहते हो भाई वो थोड़ा चीज दिखाना, अब आप इशारा कर रहे हो कि वो दिखाना, देख तो लिया आपने, फिर आप हाथ में लेते हो, अब हाथ देख रहा है क्या? आपने की आंख ने तो देखा, हाथ में क्यों लिया? हाथ में लिया मेक कैसा है, कंपनी कौन सी है, क्वालिटी कैसी है, ड्यूरेबल है कि नहीं, कच्ची चीज है कि पक्की चीज है, क्या देखा? उसके अंदर जो उसकी विशेषता शक्ति है, जो कहीं बाहर की चीज नहीं है, उसकी वैल्यू अंदर की है, उसको देखते हैं। तो कई कहते हैं हमको बाबा नजर नहीं आता है, हमको बाबा नजर नहीं आता है, तो नजर से तो देखने की बात ही नहीं, वो तो दिव्य बुद्धि का नेत्र खोलते हैं, त्रिनेत्री बनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है। तो ज्ञान का नेत्र खोलने के लिए परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है, और वो रोज ज्ञान सुन रहे हैं हम, तो भी कहते हैं बाबा से मिलन का अनुभव नहीं होता। क्या है कि हम उस समझ से, ज्ञान की महीनता से बाप को उनके साथ संबंध नहीं जोड़ा है। जैसे भक्ति में दूसरों के अनुभव से अपना अनुभव समझे, नहीं ये तो हमारा पर्सनल अनुभव है ना, तो हम अपने अनुभव से या आत्मा के गुण जो परमात्मा ने स्मृति में दिलाए, या हम रोज व्यवहार में आते हैं तो देखते हैं, तो ऐसे परमात्मा पिता तो हमको रोज मिलने आते हैं। फिर कोई कोई कहते हैं मुरली सुनते हैं और फिर आता है कि रोज तो वही वही मुरली है, कल भी तो यही बात बाबा ने सिद्ध की, आज भी तो यही सिद्ध की, रोज तो वही बात है, इसलिए मेरे को लगता नहीं कि मैंने कुछ मिस किया है। अब उसमें भी इम्पोर्टेंस मिलने का अनुभव करने की विधि भी चाहिए। अगर ये समझ में आ गया कि ये मुरली मुझ आत्मा की खुराक है, मुझ आत्मा का भोजन है, ये मेरी पालना है। बाबा ने कहा तुम कितने भाग्यशाली हो, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और ईश्वरीय वरदानों में पलने वाले हो। अब इस बात को समझा, पालना का मतलब क्या? पालना होती है, माँ बाप पालना करते हैं, तो पहली बात है माँ फीड करती है ना। माँ का पालना करने का तरीका भाई भोजन खिलाती है। तो अब परमात्मा भी हमको ये रोज अमृत पिलाते हैं और साथ साथ मुरली भोजन खिलाते और हम कहे अरे जब से पैदा हुआ हूँ ना पानी पीता ही आता हूँ, रोटी खाता ही आता हूँ, रोज रोज वो ही तो रोटी है। कभी सोचा है उसे रोज रोज वही तो पानी पीते हो और मुरली रोज रोज वही रिपीट होती है, ऐसा कह के वैल्यू को कम कर दिया। वो अंदर आत्मा को जो लेना चाहिए ना मिलना क्या है, अब शब्द है एक ही, मिलना। बाहर का मिलना नहीं है, बाबा हमको क्या देने आया है, मैंने लिया क्या, उस लेने का नाम मिलना है। लिया ही नहीं तो मिला कैसे, मिली मैंने ली तो मुझे मिली ना। अब वो भोजन मैं खा रही हूं तो उस भोजन की शक्ति मुझे आत्मा में आएगी ना, जरूरी है रोज। हाँ उसको वैरायटी करके बनाते हैं, है तो वही गेहूं आलू वही है, चाहे परांठा बनाओ चाहे रायता बनाओ समोसा बनाओ चाहे टिक्की बनाओ, माताओं से पूछो आलू की 25 तरह की चीजें बन सकती है तो एक ही आलू ही तो है। फिर बाबा को पता है कि ये रोग है, आत्मा अभी बीमार हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, तो ये दवाई है विकारों की बीमारी को खत्म करने की, हेल्दी बनने। वहां पर शरीर होते भी हेल्दी तो आत्मा भी हेल्दी हो गई। तो आत्मा को हेल्दी बनाने के लिए, रोग को मिटाने के लिए दवाई है। अब डॉक्टर ने आपको दवाई दी क्रॉनिक डिजीज की और कहा ये 6 महीने खानी है और दिन में 3 बारी खानी है, क्या डॉक्टर है, एक ही दवाई दिन में 3 बारी खानी पड़ेगी कभी सोचा है सर? ध्यान से खाते हैं, डॉक्टर ने कहा है 3 बारी खानी है, पूरे टाइम पर अरे धरे टाइम पर खानी है, टाइम पर खानी है, कितना ध्यान रखता है, वही दवाई है ना 3 बारी खाई कभी ये ख्याल नहीं आता खानी है। तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वो जो निरोगी बनाना चाहते हैं, आत्मा को योगी तभी बना सकेंगे जब अंदर का यह रोग विकारों का रोग साथ साथ खत्म हो, या निर्विकारी बनते जाए तो निराकारी से मिलन होता रहे, देह अभिमान छूटता जाए तो देह अभिमानी से मिलते जाए। मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है और मैग्नेट के बीच में कोई दूसरी चीज आ जाती है तो भले कितना भी पावरफुल मैग्नेट हो खिंच के आएंगे। तो विधि जो बाबा ने बताई है हमने उस विधि को यूज नहीं किया, हाँ फिर भी परमात्मा पिता, क्योंकि माँ बाप ही हैं, बच्चा गिर भी जावे तो ये नहीं कहेगा गिर रहे, कहेगा उठाओ इनको, झुक के उठाएगा। तो निराकारी निरंकारी बाप खुद आते हैं बच्चों से मिलन मनाने के लिए और वो मिलन भी बड़ा अनोखा होता है। इसमें शब्दों की बात नहीं है, इसमें संकल्प और निश्चय और संबंध की बात है। हमारा पहला मिलन, हमारा जन्म बाबा के साथ का अनुभव बड़ा निराला है, बिल्कुल निराला है, क्योंकि हर एक का मिलन का तरीका अलग है, एक ही है परंतु दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, अभी उसके गुण ही दिखाई देते हैं ना। अब गिलास है, गिलास में ढका पड़ा है, अगर इसमें गर्म पानी है, पानी अंदर उबला हुआ डाला है तो अभी दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, गिलास को हाथ लगाऊंगी कहूंगी गर्म पानी है, गर्म दूध है, उसका उसकी विशेषता ग्लास में भी आ जाती है ना। बर्फ डाली, छुआ, कहते उसमें बर्फ, बड़ा ठंडा है, वो तो अंदर पड़ी है, आपने तो देखी नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा ब्रह्मा धन में बाबा आते हैं। तो ऐसे नहीं कि बाबा कहते मुझे याद नहीं करो, पर इनके तन में आके जो उनके गुण हैं, जो परमात्म शक्तियां हैं, जो परमात्म प्यार है, वो ऐसे ही अनुभव होता है जैसे गिलास गर्म पानी का है। तो गर्म पानी तो अंदर है, पर हाथ लगाते हाथ को महसूस होता है। तो बाबा की शक्ति का, प्यार का अनुभव, उसकी आंखों से देखने की बात नहीं पर अनुभव की बात है। बाबा दिल्ली में आए थे, ये 57 की बात है। बाबा दिल्ली में आए थे और मेरे को तो उस समय ब्रह्मा कुमारियां हैं, मतलब हमारी मासी ज्ञान में थी पर इतनी पहचान नहीं थी। तो हमारे कॉलेज फ्रेंड, मैं बीए पढ़ रही थी उस समय, तो कॉलेज की फ्रेंड ने कहा हमको हमेशा ज्ञान की बात, मतलब भक्ति की बात अच्छी लगती थी। उसने कहा तुमको सत्संग अच्छा लगता है ना, तो कल शाम को एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप मेरे साथ चलना। मैंने कहा अच्छा, हमारी मासी ने भी कहा था आना। मैंने कहा चलो ठीक है, निमंत्रण मिले, सत्संग में तो मुझे जाने का शौक है। तो हम गए, हमारी माता जी भी हमारे साथ गई। तो मैं तो पहली बार गई थी, तो वहाँ की दीदी ने कहा, छत पर क्लास होने वाला था रजौरी गार्डन में, तो मेरे को कहा कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा पहले समझना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बहुत सत्संग किए हैं, कथाएं भी सुनी है, मेरे को शौक है, तो मेरे को समझ में आएगा। उसने कहा नहीं, फिर भी थोड़ा समझना पड़े। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि कोई बात, इसको नहीं समझ में आई, जाए तो सही ना, ऊपर जाने तो दो, बाबा को देखे तो सही, और कोई बात नहीं समझ में आएगी तो कल मेरे से पूछ लेगी, मैं बताऊंगी। तो हमारी मदर को तो उन्होंने जाने दिया, क्योंकि मासी के साथ पहले आई थी, मैं तो पहली बार गई थी, तो मदर तो आगे जाके बैठ गई। और मैं जैसे ही गई तो मुझे छत पर ही था, तो मैं सीढ़ियों के बिल्कुल पास जाके बैठ गई। मैंने कहा नहीं समझ में आएगा, उठ के चली जाऊंगी। तो अभी देखे सारे लोग बैठे हैं, सभा तो बड़ी है पर कोई बोल नहीं रहा है, चुपचाप बैठे हैं, न कीर्तन है, न ढोलकी है, न भजन है, ये क्या कर रहे हैं? और महात्मा जी भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो मैं तो आंखें बंद करके बैठ गई। अब किस समय बाबा आए ये तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि योग चल रहा था। और बाबा अभी समझ में आता है, बाबा आए सामने गद्दी पर आके बैठ गए। मैंने जब आंखें खोली तो देखा ये महात्मा जी बैठे हैं। इतना ही बड़ा हॉल, छत इतनी बड़ी थी, दबाव 200-250 भाई बहन होंगे, सब जमीन पर ही बैठे थे। तो बाबा को देखा तो बाबा की बॉडी जैसे कि लाइट की, ट्रांस लाइट वाला होता ना रूप, फ्रेम नहीं, मतलब लाइट ही लाइट दिखाई पड़ी। मैंने कहा ये अजीब महात्मा जी है, इनको लाइट की बॉडी कैसे है? पर फिर योग लॉजिक लगा, सूरज का प्रकाश पड़ता होगा इन पर। फिर अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, इन पर ही क्यों है वो प्रकाश, बाकी लोग भी तो बैठे हैं ना, वो सूरज का अक्ष तो वहां भी जाना चाहिए ना। तो जगह बदली किया, वो जन छत के थोड़ा इस एरिया में जगह थी, मैं बैठ गई। वहां भी देखो तो बाबा की बॉडी लाइट की, मैं अपने आप को पिंच किया कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, आंखें मली अच्छी तरह से, जगह भी बदली की। अब जब आंखें खोलती हूँ तो बाबा की लाइट, और आंख बंद करती हूँ तो जैसे बहुत सुंदर, जैसे चंद्रमा की शीतलता मेरे आसपास, ठंडी हवा है, और बाबा को देखती हूँ तो एक पावर, शक्ति का अनुभव है, कुछ विशेष अनुभव, जैसे कि खींच रही है वो लाइट। तो जैसे बच्चे खेलते हैं ना आँख में चोनी, तो मैं आँख खोलूँ और बंद करूँ, आँख खोलूँ और बंद करूँ। और अनुभव ऐसे था जैसे गर्मी का मौसम होता है तो पसीना आ रहा होता है, और ठंडी हवा चलती है तो सारे शरीर में गुदगुदी होती है। अब अंदर का अनुभव तो पता नहीं था, पर ऐसे लगा जैसे कि ये गुदगुदी हो रही है, मतलब यानी अच्छा लग रहा है, आनंद, मतलब अभी समझ में आता है कि वो आनंद का अनुभव था, कुछ सूक्ष्म चीज थी, बहुत अच्छी नई चीज थी। तो मैंने सोचा देखो कैसा संकल्प, कितनी माया के विघ्न में कितनी सूक्ष्म तरह से आता है। मैंने कहा कि ये महात्मा जी कोई जादू कर रहे होंगे, ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, ऐसा सुना था। मेरी माँ कहाँ बैठी है देखूं, अगर मेरे को कुछ हो जावे तो मेरी माँ तो बैठी है ना। अब मैं ढूंढने लगी, वो तो आगे जाके बैठी थी। अब देखा देह आई, देह का संबंध याद आया, डर याद आया, वो जो अनुभव हो रहा था वो गुम हो गया। वो जो रस आ रहा था, एक अच्छा लग रहा, जैसे छोटा बेबी होता है, फीलिंग भी बहुत आनंद की थी, प्यार का अनुभव भी था, वो डर के रूप में गुम हो गया। अब मुझे ज्ञान सुनू कुछ समझ में ना आवे, बार बार लाइट लाइट शब्द बोल रहे हैं, मैं कह अजीब महात्मा जी हैं, लाइट ही लाइट, पता नहीं कौन सी कथा कर रहे हैं, ना रामायण की है ना महाभारत की है, पता नहीं कौन सी कथा कर रहे हैं। तो बोर होने लगी। अब मेरे को लगा कि माँ को कहूँ कि चले अभी, परंतु वो तो इतनी मस्त थी सुनने में, चेहरा मुस्करा रहा था, आंखें चमक रही थी, आनंद उनको हो रहा था। मैंने समझा ये भी शायद ये लाइट देख रही है। तो मैं आंखें, मैं मतलब उनको, मेरा थॉट उनको पहुंचा नहीं, नहीं तो कभी जहां संबंध होता है तो अचानक कोई मुड़ के देखता है, पर वो तो मस्ती में थी। क्या कथा खत्म हुई, कथा तो नहीं थी, मतलब वो प्रोग्राम पूरा हुआ, हमको तो ये पता नहीं था कि आगे जाके टोली ले सकते हैं, कुछ मालूम नहीं था। उठ के आ गए, रास्ते में मैंने माँ से बात की, अपना अनुभव सुनाया, मैंने कहा पता नहीं कौन सी कथा की, कुछ भी समझ में नहीं आया, पर ये अजीब बात देखी, लाइट देखी, और फिर डर भी लगा। तो वो कहती है कि उन्होंने तो इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान, कि परमात्मा का घर कहाँ का है, हम आत्माएं आती कैसे हैं, यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ से वापस कब जाना होता है। मेरे को तो कई प्रश्नों का उत्तर मिला, मैं गीता पढ़ती थी परंतु समझ में नहीं आता था, एक ही लेक्चर में इनके कितनी सारी बातें समझ गई। मेरे लिए तो बहुत अच्छा मार्ग है ये। फिर कहती हैं पर मुझे तो कुछ क्या लाइट नहीं नजर आई। अब हम दोनों एक जगह गए, मुझे लाइट नजर आई, ज्ञान समझ में नहीं आया, उनको ज्ञान ने टच किया, लाइट नहीं देखी। अब मेरे को क्यूरोसिटी हुई ये लाइट कहाँ से आ रही थी। तो मैंने बहन को कहा कि ये जो मेरा अनुभव था वो रिपीट किया। उसने कहा कि आपका कोई भाग्य ऐसा अच्छा होगा जो आपको मालूम है, भगवान प्रवेश होके इनमें बोलते हैं, मैंने कहा नहीं, भगवान की कोई आकाशवाणी नहीं बजी, मौसम इतना अच्छा था न वहां, न गजगोर हुई न बिजली चमकी, भगवान का आकाशवाणी होवे। तो उसने कहा अगर भगवान गजगोर करे और ये बिजली चमकाए तो कौन बैठेगा वहां पर। परमात्मा तो वो अपने बच्चों से बात कर रहे थे, तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। तो फिर कहा, मैंने कहा नहीं परमात्मा कहा इनके तन में आके परमात्मा बोलता है। मैंने कहा उनका तो शरीर जल जावे भगवान अगर आवे तो। भगवान तो हजारों सूरज से तेज में है, जो मेरे को भक्ति का ज्ञान था। तो उसने कहा कि भगवान किसका शरीर नहीं जलाता, भगवान जो शरीर भान में हम पाप कर्म करते हैं उनको भस्म करता है। वो समझते हैं भगवान से भस्म करता है, जो भगवान भगवान की शक्ति पाप भस्म करती है, शरीर भस्म नहीं करती। मतलब फिर मैंने कहा फिर भी शक्तिवान है ना, सर्वशक्तिवान, वो शरीर को संभाल कैसे सके परमात्मा की शक्ति को। वो किसी में देवी आती थी उसका सिर घूमने लगता था, आंखें बड़ी हो जाती थी, जीभ बाहर निकल आती थी। हमारे घर में हमारे गांव में देवी आती थी, माता जी आती थी। मैंने कहा भगवती आती है तो हालत खराब हो जाती है, भगवान आया ये तो महात्मा जी बड़े आराम से बैठे थे। तो वो कहती है भगवान तो सर्वशक्तिवान है परंतु भगवान बच्चों से बात करते हैं तो लाइट है, वो गॉड लाइट है और लाइट में लाइटनेस है, बोझ कुछ नहीं है। मेरे को उसने मिसाल दिया, मेरे हाथ में रुमाल था, कहा आपका ये रुमाल गिर जावे आप उठाएंगी। मैंने कहा धुलाई कर लूंगी ना। कहा कितनी ताकत चाहिए, मैंने कहा ताकत की क्या जरूरत है, ऐसे उठा लूंगी। कहा 20 किलो वजन उठा सकती हो, मैंने कहा मेरे में मसल्स हैं, मैं ऐसे ही जैसे नहीं सूटकेस उठा रही हूँ। तो मेरे वो कहती है तुम रुमाल उठाया, मैं तेरा फोटो खींचू तो बड़ी सहज था, ये तुम रुमाल उठाते समय तुम मसल्स क्यों नहीं यूज करती हो, ताकत क्यों नहीं यूज कर रही हो। मैंने कहा मैं रुमाल उठाऊं और जैसे मैं सूटकेस उठा रही हूँ लोग तो समझेंगे मैं पागल हूँ। वो कहते बड़े प्यार से कहती है सुदेश तेरे में इतनी अक्ल है कि रुमाल उठाना है तो ऐसे ही उठा लेना है, सूटकेस उठाना है तो शक्ति लगानी है। तो भगवान को तो अपने बच्चों से बात करनी है, कोई ताकत दिखाने की बात नहीं है। तो मेरे को बराबर तो भगवान अच्छा वो लाइट है, वो प्रवेश कैसे किया, मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी, कल जाऊंगी ना आंखें खोल के बैठूंगी देखो कि वो लाइट कैसे प्रवेश करती है। दूसरे दिन गई, बाबा तो चले गए, वो शायद टूर पर ही गए थे, पंजाब गए थे कहाँ गए थे। तो फिर तो बाबा से मिलन तो नहीं हुआ, पर मैं रोज क्लास कॉलेज के बाद जाती थी, दोपहर को 1:30 बजता था, 2 बजते थे, कोई क्लास कराने वाला तो नहीं होता था। तो वहाँ पर बाहर ही रजौरी के अर्डन में, अभी का मकान नहीं उस समय, आज से 60-65 साल पहले की बात है, तो एंट्रेंस के साथ ही शेड थी और उस पर नीचे कुर्सी टेबल था, लिटरेचर रखा रहता था, मुरली पड़ी होती थी, वो मैं लिटरेचर पढ़ा अच्छी तरह से, मुरली रोज पढ़ती थी, धीरे धीरे समझ आने लगी, रोज पढ़ने लगी, नोट्स बनाए। मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी अपने आप ही पढ़ते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि प्रोफेसर को पढ़ानी है। एक माता जी थी, रानी माता, वो कभी कभी मेरे को मुरली सुनाती थी तो ज्यादा समझ में आती थी। एक दिन मैं बैठी थी तो दो बहनें, विमला बहन चांदनी चौक वाली और उनकी बहन कृष्णा, वो आई बाबा से मिलने के लिए। तो उसने कहा कि आप बाबा से मिलने आई हो? मैंने कहा नहीं, बाबा तो टूर पर गए हैं और मैं जब आएंगे तो मिलूंगी। उसने कहा नहीं, बाबा तो आए हैं, हम उनसे ही तो मिलने आए हैं। मैंने उनको कहा, बहन को, कि ये बाबा से मिलने आई है, मैं भी मिल के जाऊं। उन्होंने कहा बाबा आज टूर करके आए, आज तो रेस्ट करेंगे भोजन खा के, अभी आप कल सवेरे आ जाना। तब तक उन्होंने ये तो समझा था कि मेरे मुरली का मेरे लिए प्यार है, मैं अच्छा, मुझे योग भी अच्छा लगता है। तो मैं फिर कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकी, मैं बैठी योग में। तब तक निश्चय हो चुका था, मुरलियों से ही निश्चय हुआ था कि भगवान निराकार साकार में आके बोलते हैं और बच्चों को मतलब क्या 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 प्राप्ति होती है, क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैंने कहा भगवान, योग किया 10 मिनट, मैंने कहा भगवान आप परम धाम से आके यहाँ बैठे हो फर्स्ट फ्लोर पर, ये ब्रह्मा के तन में, आप नीचे नहीं आ सकते हो? ये बहन कहती है कल मिलेंगे, कल तो मेरा फादर आने नहीं देगा मुझे। मैं ऐसा दिल से बोला, ये योग के योग में ही जैसे बोला। थोड़ी देर के बाद जब जाने लगी, योग करके पैक की अपनी मुरली और किताब, तो बाबा को देखा तो बाबा पीछे बैक साइड से भोजन खा के शायद नीचे चक्कर लगाने आए। और मैंने जो बाबा को देखा तो मैं तो दौड़ के जैसे बाबा मेरे इतनी खुशी जैसे छोटा छोटा बच्चा होता है ना, मैं दौड़ के बाबा को चिपक गई। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची बच्ची तुमको कोई नहीं रोकेगा, तुम कल आ जाना। अच्छा, ये बाबा ने सुन लिया मेरी बात, बाबा मेरी बात सुन करके आए। पर वो जो बच्ची शब्द कहा ना, वो ऐसा जैसे अंदर एक करंट लगा, बच्ची कहते ही जैसे मेरे को बाबा ने स्वीकार कर लिया वो प्यार। और फिर अंदर बाबा ने कहा कल आ जाना, तो अंदर हिम्मत आई, कल सवेरे आई। हाँ ना, बाबा ने कहा बच्ची आ जाना कल सवेरे, तो मुरली तो खत्म हो चुकी थी। दीदी मनमोहिनी जी बाबा का हाथ पकड़ के नीचे ही चैम्बर में लेके आई, कमरा में बैठते थे उसको चैम्बर कहते थे, छोटा सा कमरा था। बाबा ने मुझे नोड किया तो मुझे तो परमिशन मिल गई, किसी ने मना नहीं किया क्योंकि बाबा ने इशारा किया आ जाओ बच्ची। दीदी जी बाबा से मुरली की पॉइंट्स के क्वेश्चंस पूछती थी, या भी जो क्वेश्चंस है ना ये लिखती है, जो भी है दीदी लिखती थी क्वेश्चन उस समय भी, और उसका उत्तर भी तो वेरीफाई करती थी बाबा से। तो मेरे को फिर बाबा द्वारा ही वो कोर्स जैसे होता है ना, मेरा कोर्स रिवाइज हो गया। तो बाबा से ही जैसे रूहानी जन्म मिला। तो फिर जो है, एक दिन बाबा ने कहा, मैं रोज जाने लगी ऐसे ही, एक दिन बाबा ने कहा मैं तेरे बाप को चिट्ठी लिखूंगा कि आपकी बेटी हमारे पास आती है। और मुझे तो इतना नशा चढ़ गया था तब तक, मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ ना, आप मेरे बाप हो ना, आप जानते हो ना मैं आती हूँ। बाबा ने कहा बड़ी मजबूत हो, बड़ी पक्की हो, और छाप लग गई, समझा मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो बाबा से प्रैक्टिकल में फिर तो बहुत सारे आगे अनुभव हैं, बाबा ने बहुत, फिर हाँ राखी का टाइम था, मैंने बाबा को राखी भेजी, रुमाल में बाबा ने एक रुमाल भेजा, टाइम होता है पूरा करती हूँ, एक रुमाल भेजा, उस रुमाल में पैसा भेजा रुपया। संकेत क्या था, ज्ञान धन तो बाबा देता है पर तो ये भी सदा भरपूर रहेगा। तो बहुत प्यार से सौगात भेजी, पत्र तो कितने लिखे, पर उस समय तो पता नहीं था क्योंकि हमेशा पत्र आते थे, संभाल के नहीं रखे, रोज की बात थी। मिलन भी बहुत बारी हुआ, अनुभव भी अनेक प्रकार के हुए, कभी कहा ज्ञान बुलबुल हो, कभी कहा ज्ञान बादली हो, बहुत जगह सेवा पर भेजा, तो मतलब मिलन के अनेक अनुभव बाबा के साथ है। विदेश में भी बाबा ने भेजा, पहला मिलन भी बाबा को लाइट के रूप में देखा और लास्ट मिलन भी बाबा का लाइट का। 1968 नवंबर में मैं मधुबन गई जयपुर से, जयपुर में म्यूजियम खोला था तो वहाँ पर गई, तो बाबा ने मुझे बहुत वरदान दिए कि ये बच्ची विदेश जाएगी, अनेकों को संदेश देगी, नहीं वारिस तैयार करेगी, है ना। तो भगवान का ये प्लान था जन्म पत्र देख के विदेश भेजने का। विदेश क्या होता है वो पहले इतनी समझ नहीं थी, जाने के बाद 50 साल वहां रहे, 100 देशों में जाने का समझ मिला। तो बाबा जानते हैं, सेवा करके फिर वापस बुला लिया भैया, समझे, आप सबसे मिलना फिर बहुत अच्छा हुआ।
शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वो अनसुने अनुभव, वो अनदेखे अनुभव, और जैसे हम सभी को लग रहा था कि आप ही नहीं हम भी बाबा के सामने थे, सिर्फ आपने ही मिलन नहीं मनाया, हमने भी बाबा से मिलन मनाया। आपने इस प्रकार से हम सब उस कहानियों में अनुभव में खो गए, है ना, हम सभी खो गए, है ना। यस, तो दीदी जी ऐसे, दीदी जी का भी बहुत अच्छी तरह से हम सम्मान भी इसलिए करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ एक हर्ष माता हैं, वो आकर भी बहुत सुंदर बाबा का एक गीत गाएंगी, कविता सुनाएंगे, सभी बाबा की याद में बैठेंगे और ये कविता सुनाएंगे, और इसके बाद जैसे हमारा लंच का टाइम होगा, लेकिन फिर भी भाई बहनों को रिक्वेस्ट है सिर्फ 5 मिनट कविता के बाद बैठना, कुछ डायरेक्शंस देने हैं। अच्छा, हर्ष बहन जी ने वो कविता खुद से लिखी हुई है,
सुनाएं। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, ज्ञान की रिमझिम फुहारे, ज्ञान की रिमझिम फुहारे, रूहानी मस्ती से भरी, रूहानी मस्ती से भरी, मीठी सी मुस्कान के संग मुझ पर आ ऐसे पड़ी, मीठे मीठे बाबा, मोती चुन चुन ज्ञान के, मोती चुन चुन ज्ञान के, रूहानी श्रृंगार मेरा कर रही, पास बाँक अलौकिकता ऐसे सजा रही, ज्ञान की रिमझिम फुहारे रूहानी मस्ती से भरी, दुखों की तपिश को भूल, दुखों की तपिश को भूल, मीठी यादों में खो रही, मीठी यादों में खो रही, सारथी बन बाबा संग चले, सारथी बन बाबा संग चले, यादों की मुरली बजती रही, ज्ञान की रिमझिम फुहारे यादों की मुरली बजती रही, मीठे मीठे बाबा प्यारे प्यारे बाबा, कारवां जो छूट रहा पुराना नई राजधानी बन रही, कारवां जो छूट रहा पुराना नई राजधानी बन रही, उत्सव बनी है जिंदगी, उत्सव बनी है जिंदगी, कोई भी इच्छा अधूरी न रही, कोई भी इच्छा अधूरी न रही, मीठे मीठे बाबा रोने की फुर्सत अब नहीं, अलौकिक लगन लग रही, रोने की फुर्सत अब नहीं, अलौकिक लगन लग रही, कैसा है वह जादूगर, कैसा है वह जादूगर, ये बात निश्चय पर अड़ रही, मीठे मीठे बाबा प्यारे प्यारे बाबा, सुबह सवेरे याद कर नहीं तू फरियाद कर, सुबह सवेरे याद कर नहीं तू फरियाद कर, कैसी रही जिंदगी झूठ नहीं फरेब नहीं, झूठ नहीं फरेब नहीं, सच की है सदा जीत रही, सच की है सदा जीत रही, ज्ञान की रिमझिम फुहारे रूहानी मस्ती से, रूहानी मस्ती से भरी, मीठे मीठे बाबा प्यारे प्यारे बाबा, ओम शांति।